ओम शांति। आजकल दुनिया में मनोरंजन के लिए बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाते हैं, घूमने के लिए कोई पार्टीज में जाते हैं, कोई शादी में जाते हैं, कोई म्यूजिक शो देखने जाते हैं, गीत सम्मेलन में जाते हैं, कोई सर्कस में जाते हैं खुश होने के लिए, है ना। बहुत सारी चीजें, कोई डिस्को में जाते हैं। लेकिन हमारे लिए मनोरंजन के साधन कुछ और है। जब हम सब इस ब्राह्मण जीवन में आए तो ये भी मौजों का जीवन है। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा, संगम युग मौजों का युग है। तो आज हमारी चर्चा ब्राह्मण जीवन में वो कौन से रूहानी मौज है उस पर करेंगे। तो आपको क्या लगता है, ब्राह्मण जीवन में रूहानी मौज कौन कौन सी है? बाबा को याद करना सबसे बड़ी रूहानी मौज, और बाप के साथ रहना, और आना जाना बाबा के पास, आना जाना, सेवा करना, और बाबा से पालना लेना रूहानी मौज, और विश्व में चक्कर लगाना, घूमना, सत्युग में जाना, और किस किस चीज में मौज आता है आप लोगों को? मुरली सुनना, बहुत अच्छा, और मुरली चिंतन, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना, और कुछ? बाप मिला सब कुछ मिला, बाबा का परिचय देना, बाबा ने जो कायदे बताए उन पे चलना, हाँ उसमें भी मौज है। अमृत वेला, ब्राह्मण परिवार में रहना, ईश्वरीय परिवार, तुम इस ईश्वरीय फैमिली के हो, आज बोला ना बाबा ने, तो बहुत सारे उत्तर आए। तो सबसे पहला जो उत्तर था, याद, अमृत वेला। बहुत लोगों ने बोला अमृत वेला, अमृत वेला भी मौज ही मौज है ना, मौज, क्योंकि बाबा से मुलाकात होती है एवरीडे हमारी। तो अमृत वेला भी सिर्फ नियम प्रमाण नहीं उठना है कि बस टाइम हो गया, उठ गए, आके बैठ गए, टाइम देख रहे हैं 4:45 का गीत कब बजेगा और कब हम उठ के चले चाय पीने और फिर अपनी सेवा पर, तो ये रूटीन है, लेकिन ये मौज नहीं है। अगर अमृत वेला को मौज में मनाना है तो हमको क्या क्या करना है? तो जैसे कि अभी आज 30 जनवरी है, कल 31 जनवरी, और जनवरी मास ओवर, और जनवरी मास में हम देखते हैं कि पुरुषार्थ सबका बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसको खत्म नहीं करना है, उसको और आगे बढ़ाना है। तो आप सबको याद होगा कि यज्ञ की तरफ से हम सबको 21 पॉइंट मिले थे, है ना, 1 जनवरी से 21 जनवरी तक, और सबने विशेष उस पर अभ्यास किया ही होगा। तो उसमें से कोई पॉइंट उठाकर उस अभ्यास को जारी रखना, जैसे कि हम लोगों ने ग्रुप में इस पर अभ्यास किया था, तो बाबा ने वो पॉइंट्स, किसी को याद है कोई? कुछ पॉइंट्स, जैसे बाबा ने एक में कहा था कि ग्लोब पर जाके गुलाब वाशी करो, है ना, तो कैसे करेंगे? तो इसमें थोड़ी नवीनता लानी है, ऐसे नहीं कि अमृत वेला आ गए, बैठ गए, 500 रूप का अभ्यास हो गया, बाबा से दृष्टि ले ली, थोड़ी सकाश दे दी और खत्म। अब बाबा ने जो ये नई नई 21 पॉइंट्स हमको मिली ना, इनको प्रयोग में लाना है अमृत वेला। तो जैसे कि मैं फरिश्ता उड़ा ग्लोब के ऊपर और बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है, और मैं पूरे संसार में गुलाबवाशी कर रही हूँ। किसकी गुलाबवाशी? शांति की, शक्ति की, कहीं प्रेम की, कहीं पवित्रता की, ये कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें बाबा ने कहा था कि आप पूर्वज आत्माएं हो, आप इस विश्व की आधार मूर्त हो, आप जड़ों में बैठे हो, बाबा ने कहा। तो उसमें हमने कुछ अभ्यास किए थे, जैसे कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सारा कल्प वृक्ष ऐसे ऊपर, और हम जड़ों में बैठे हैं, ठीक है, और जड़ों का इसमें 3-4 कल्प वृक्ष लेंगे। जैसे पहला यज्ञ, हम जड़ों में बैठे हैं, हम पूर्वज हैं, और जो पहला वाला जो स्टैम्प है वो कौन है? सारी टीचर बहने बैठी है। इमर्ज करो ये सीन अपने सामने कि आप जड़ों में बैठे हो, इधर ऊपर टीचर बहने बैठी है, एक तरफ कुमार बैठे हैं, एक तरफ कुमारियां बैठी है, एक तरफ माताएं बैठी है, एक तरफ अधर कुमार बैठे हैं और एक तरफ जो बच्चे हैं हमारे यज्ञ में वो सब बैठे हैं और बाबा की किरणें परमधाम से मुझ पर पड़ रही है और अब मुझ से निकलकर इन सभी आत्माओं को जा रही है। तो आप एक एक ब्राह्मण परिवार की आत्माओं की सेवा करेंगे इस योग अभ्यास से। तो ये एक योग अभ्यास है। दूसरा इसमें योग अभ्यास किया था कि हम जड़ों में बैठे हैं और जैसे संसार का कल्प वृक्ष है तो जो बीच में आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर एक तरफ है हिंदू धर्म, एक तरफ है मुस्लिम धर्म की आत्माएं, एक तरफ सिख धर्म की आत्माएं, एक तरफ क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं और मैं पूर्वज हूँ, मैं इस विश्व की आधार मूर्त हूँ और बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे शक्तियों का दान संसार की सभी आत्माओं को जा रहा है। तो ये एक अभ्यास कर सकते हैं। तो इसी तरह से यज्ञ को लेंगे आप तो यज्ञ की इतनी शाखाएं हैं। तो हम पूर्वज जड़ों में बैठे हैं और ऊपर देखे एक तरफ शांतिवन, एक तरफ पांडव भवन, एक तरफ संगम भवन, एक तरफ ग्लोबल हॉस्पिटल, एक तरफ ट्रॉमा सेंटर, शिवमनी होम और क्या क्या है, पीस पार्क, म्यूजियम। अब इन सब की भी सेवा करनी है स्थानों की हमें। हम ऐसे एक एक जगह पे तो नहीं जा सकते परंतु बुद्धि से हम सबकी सेवा कर सकते हैं और हमारा योगदान दे सकते हैं। तो संकल्प करें कि मैं पूर्वज आत्मा, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे इन सभी स्थानों पर जा रही है। और एक बहुत बहुत पावरफुल संकल्प करें कि आज जो भी आत्मा इस स्थान पर आएगी बाबा का यथार्थ परिचय लेके जाएगी, बाबा का ज्ञान लेके जाएगी। तो ये संकल्प सब जगह पे छोड़ के आओ, हर जगह पर बुद्धि से। और यहाँ पर जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा दे रही है उनमें पवित्रता का बल भरे। ये सारे स्थानों पर सेवाधारी आए हैं सब स्थान से, उन सब में भी पवित्रता शक्तियों का दान भरे। तो ये एक ड्रिल कर सकते। तो ऐसे अमृत वेला को एक एग्जाम्पल दिया कि रमणीक बनाना है। जैसे बाबा कहता है ना कि अमृत वेला बाबा के साथ पिकनिक करो, बाबा के साथ पिकनिक करो, कभी कोई स्थान पर पहुंच जाओ तो कभी कोई स्थान पर पहुंच जाओ। इसी 21 दिन के अभ्यास में बाबा ने अशरीरीपन का अभ्यास, बीज रूप स्थिति का अभ्यास, विदेही स्थिति का अभ्यास, देही अभिमानी स्थिति, ज्वालामुखी योग। तो कोई भी एक अभ्यास लेके उसको करना। एवरीडे अगर हम सेम चीज करते तो हम बोर हो जाते, इसीलिए हमारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हम ये करेंगे। एक विदेश का भाई आया था, वो शेयर कर रहे थे कि वो सुबह में 2 बजे उठ जाते और 5 बजे तक योग करते। तो उन्होंने अपने योग को कैसे डिवाइड करके रखा है कि 2 से 2.5 ये करूंगा, 2.5 से 3 ये करूंगा, 3 से 3.5 ये। कभी उनको उठने में देरी हो जाती है, कभी वो 2.5 बजे उठ जाता है तो जो 2.5 बजे वाला योग है फिर वहां से चालू करता है। तो इस तरह से लोगों ने अपने योग को भी देखो कैसे डिवाइड किया है। तो लोगों से सीखना है ना। वैसे ही दिन भर में योग का अभ्यास, ट्रैफिक कंट्रोल, दिन भर में छोटी छोटी ड्रिल्स, जैसे गुलाबबाशी बाबा कह रहे हैं ना, तो समझ लेना कि हम स्प्रे कर रहे हैं जो भी हमारे सामने आ जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं खुशी का दान दो, सबसे बड़ा, जैसे संडे की मुरली थी, सबसे बड़ा खजाना बाप ने आपको क्या दिया है, खुशी। और खुशी बांटनी है, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, है ना। तो यही दिन भर यही सोचो कि आज मुझे खुशी का दान देना है सबको, जो मेरे सामने आएगा मुझे उसको देना है। संकल्प करेंगे तो होगा, संकल्प करेंगे तो ही होगा, टाइम टेबल बनाएंगे, लक्ष्य रखेंगे तो होगा, तो रूहानी मौज में रहेंगे पूरा दिन। देखोगे अमृत वेला और याद, ये पहला पॉइंट। दूसरा, किसी ने कहा मुरली, मुरली में सबको मौज और मजा आता है कि नींद आती है, मजा आता है, हाँ बहुत आनंद आता है। तो मुरली में बहुत आनंद आना ही चाहिए, लेकिन किसी किसी की कंप्लेन होती है कि हम सुबह अमृत वेला से उठते हैं फिर सेवा वेवा करते करते जब मुरली तक पहुंचते हैं तब थोड़ी नींद आने लगती है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? अच्छा, क्लास में बैठ के मुरली बाबा से कनेक्शन जोड़ के वाइब्रेशन फैलाओ और एक्सरसाइज कर रहे हैं। उस दिन याद है आप लोग थे, एक बहन जी ने एक्सरसाइज कराई क्या, ऐसे ऐसे कुछ कुछ, ऐसे कुछ कुछ कराई। कान पकड़ के, अच्छी अच्छी पॉइंट्स। हाँ, एक चीज हम देखते हैं, बहुत लोगों को आदत होती है कि मुरली का सार लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, उसके बाद डायरी बंद, और फिर डायरी धारणा के लिए मुख्य सार पे खुलती है। तो इसीलिए बीच का हमारा चार पेज मिस हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं हमारा काम हो गया, क्वेश्चन हो गया, बंद करो, अभी धारणा के लिए मुख्य सार। लेकिन जैसे भाई जी ने कहा कि मुरली के मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान से सुने कि आज बाबा क्या कह रहा है, आज ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाबा कहता है ना, ये चार पेज का लव लेटर है ना, तो लव लेटर है, तो जैसे जो लवर्स होते हैं वो कितने ध्यान से है ना पढ़ते हैं, छुप छुप के पढ़ते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप और मैसेजेस है, कैसे वो लोग रुकते हैं सामने वाले का मैसेज के लिए। तो हम क्यों नहीं रुकते बाबा की हर साकार मुरली जो रोज चलती है, हमको भी उतनी उत्सुकता, उतनी उमंग उत्साह से जाना चाहिए कि आज मेरा साजन मुझसे क्या बोलने वाला है। फिर भी अगर नींद आए तो क्या करना चाहिए। तो हम इसकी चर्चा एक बार हमारे नाइट क्लास वालों से कर रहे थे, तो हम सोच रहे थे जो आगे बैठते हैं वो हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जब टीचर बहन कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो आंसर देते, पीछे वाले अपना समझते ही नहीं कि उन तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूरी सभा को पूछा जा रहा है, लेकिन आंसर सामने वाली लाइन वाले ही देते। तो इतना अटेंटिव और अलर्ट रहने के लिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर दो, रिस्पॉन्ड करो। जैसे अभी ये छोटी सी क्लास में, यहाँ कोई सो नहीं रहा, कोई नहीं सो रहा ना तो यहाँ क्यों कोई नहीं सो रहा, क्योंकि हम इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो वो क्लास में नींद बहुत आती है, क्योंकि हम इंटरैक्ट नहीं करते, हम सिर्फ ऐसे बैठे रहते कि बहन जी मुरली सुनाएंगे और जाएंगे। तो जब वो पूछते हैं तो उसका उत्तर दो, भले आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी लेकिन आप अलर्ट रहोगे, तो उत्तर देने की कोशिश करो। कई बहने देखो क्वेश्चन पूछते और उसका आंसर सभा को पूछते, तो वो एक है। कभी वो पूछते माया ने आज क्या किया है, तो वो पूछते है ना क्या किया है, क्या किया है। रोज की मुरली में कुछ अलग आंसर होता है, कभी माया बॉक्सिंग करती है, कभी घुसा मारती है, कभी नाक से पकड़ती है, कभी मुंह पलट देती है। तो बोलते जाओ जो भी आपको पता है बोलते जाओ, जब सब बोल रहे तो हम भी बोले ना, हम क्यों चुप बैठते हैं, तो नींद नहीं आएगी। दूसरा, मुरली पढ़ना, जैसे किसी ने बोला मुरली पढ़ना, मुरली का चिंतन करना, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें भी मजा है कि आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मेथड्स बनाए हैं अभी यहाँ पर कि मुरली को कैसे पढ़ा जाए, तो जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए, किस किस को याद किया बाबा ने आज, जैसे संडे की मुरली में कैसे था होली हंस, है ना, तो कुमारों को याद किया बाबा ने, तो कुमारों को क्या कहा, होली हंस के बारे में बाबा ने क्या कहा। तो ऐसे हमारे पास, हाँ ये भी कर सकते हैं कि बाबा ने मुझे आज कौन से टाइटल दिए, बाबा के कौन से टाइटल दिए, ब्रह्मा बाबा को कौन से, कभी कहते हैं ना ये तो मेरी पुरानी जूती है, ये तो पोस्ट ऑफिस है ना, लॉन्ग बूट है, ये तो मेरी वन्नी है। तो ध्यान रखते हुए पढ़ना और अपने ब्रेन में फोल्डर्स बनाते जाना कि ये पॉइंट इधर जाएगा, ये पॉइंट इधर जाएगा, है ना, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, टॉपिक मेथड, कभी कभार हमने यहाँ पे एक चर्चा की थी एक क्लास में, डिफरेंट मेथड्स मुरली रीडिंग। तो टॉपिक मेथड, जैसे कि आज की मुरली में कौन कौन से टॉपिक्स है, विशेष ऐसे कौन से टॉपिक है, जैसे कभी बाबा संकल्प शक्ति पर बात करते हैं, है ना, कभी बाबा कोई स्वमान पर बात करते हैं, कभी खुशी पर बात करते हैं, कभी खजानों पर बात करते हैं, तो कौन से टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को निकालना और फिर उन पर चिंतन करना, ये कर सकते हैं। फिर साकार मुरलियों में बहुत बार भविष्यवाणी होती है, कौन कौन सी भविष्यवाणी की बाबा ने आज, है ना, कहता है ना कि ऐसा समय आएगा जब सन्यासी भी आपके पैरों में गिरेंगे, तो ये भविष्यवाणी है ना जो आज हो रहा है। फिर बाबा सेवा के पॉइंट्स कौन से बोलते हैं, कभी बाबा कहते ट्रेन में जाके सेवा करो, कभी वो कहते मंदिर में जाके सेवा करो, कभी कहते हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराओ, तो ऐसा आज कौन मुरली में क्या क्या बोला, ये कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप लोग यहाँ पे हो तो हम देखते हैं बहुत लोग यहाँ पे शेयर करते हैं, है ना, नक्की जाते हैं ना बहुत लोग यहाँ पे, यहाँ तो वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग करते टाइम पे यहाँ पर आपको बहुत ओपन स्पेस है, वहां पे कहीं पर भी आप 5-7 मिनट बैठ जाओ। आप आधा घंटा जाते हो ना, 5 मिनट कम से कम बैठ जाओ खुली हवा में और चिंतन करो, तो देखो बुद्धि कैसी अलग से खुल जाएगी। जैसे आज का अगर स्लोगन ले ले हम, है ना, तो आज का स्लोगन ले ले और उसके ऊपर चिंतन करें और लिखे उसको, लिखे कितना मौज आएगा देखना। इसको रूहानी मौज कहते कि जैसे हमारी पॉइंट निकलते, सोचना कि आज मुझे जाके क्लास करानी है आधा घंटा, आज की मुरली पर आधा घंटा क्लास करानी है, तो आधा घंटा जब बोलना होता है तो फिर कितना चिंतन होता है, जब 5 मिनट ही बोलना होता है ना तो बहुत सारा सोचना पड़ता है। तो जब आधा घंटा बोलना है तो क्या आएगा, तो कम से कम 20 पॉइंट आएंगे आपके पास स्लोगन पे। तो इस तरह से मुरली का चिंतन, तो ये भी रूहानी मौज है ना। फिर किसी ने कहा परिचय देना, तो मुरली ज्ञान, ज्ञान इसी पॉइंट में हम इसको ले लेंगे। तो बाबा का परिचय देने में भी बहुत मौज है, होती है ना खुशी। कौन कौन गाइड सेवा करते हैं, गाइड सेवा, देखो उनके चेहरे से ही पता चल रहा है। तो जब हम किसी को बाबा का परिचय देते हैं या संस्था का परिचय देते हैं तो इतनी खुशी होती है, और सामने वाले जब चौंकते हैं, अच्छा यहाँ पे ऐसे है, और खुशी होती है। जैसे हमको याद है, हम एक बहन को यहाँ पर लेके आए, जब भंडारी में लेके गए किचन में, तो इतने सारे लोगों को, अभी कोई किचन तो खाली है, वो कह रही है। मैंने बोला हाँ खाना तो रेडी है, तो बोले अभी तो 12 ही बजे रेडी हो गया खाना। हमने कहा हाँ, बोले इतने सारे लोगों का कैसे पता, लोगों को इतने सारे लोग कैसे आए। फिर हम थोड़ा आगे गए तो वहां पे बोर्ड था, हमने कहा देखो यहाँ लिखा है निवासी इतने हैं, सेवाधारी इतने हैं, इधर इतना है, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो वो लोग देख के चौंकते हैं, उनको उनको ये छोटी छोटी चीजों का भी परिचय देने में बहुत मजा आता है। हमको हमारी कॉलर थोड़ी ऊपर होती है ना, तो और अच्छा लगता है। और बाबा का जब सेवा स्थान बताते हैं उनको, इतनी सेवाएं चलती है, जब ज्ञान सरोवर जाते हैं, जब शांति बन जाते हैं, तो उनको और खुशी होती है। तो बाबा का परिचय देने में वो मौज उतना, और अलग अलग तरीके से देना, एक ही वही तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से बाबा का परिचय देना, तो उसमें भी रूहानी मौज है। तो ज्ञान में, ज्ञान की पॉइंट्स को यूज करना, जैसे कि मुरली सुन ली हमने, लेकिन उसको वहीं तक नहीं रख देना, उसको साथ में लेके चलना। ब्रेकफास्ट की प्लेट हमारे सामने आती है ना, तो आप लोग साथ में ही करते हो, तो एक दूसरे को पूछना कि आज का स्लोगन क्या है, पहले स्लोगन याद करेंगे फिर चालू करेंगे, तो उस तरह से सबको याद रहेगा। फिर जब लंच में मिलेंगे तो पूछना कि आज का प्रश्न उत्तर क्या था, जब तक प्रश्न उत्तर याद नहीं आए तब तक स्टार्ट नहीं करना। तो इस तरह से आप लोगों को भी मजा आएगा, है ना। जितना समय यहाँ रहते हो उसका यूजफुल होना चाहिए ना उतना, कि एक एक पल में आपकी कमाई है। फिर तो वो पूछ के फिर स्टार्ट करना, फिर जब वापस रात में मिलेंगे फिर वापस पूछना, दिन भर में एक दूसरे को पूछना आज कौन सी पॉइंट अच्छी लगी। कभी कभार बहन जी कोई स्टोरी सुनाते हैं तो वो स्टोरी याद करना, आज क्या सुनाया था क्लास में विशेष, उस तरह से पॉइंट को कनेक्ट करना, तब मजा आएगा ना, नहीं तो कैसे मजा आएगा। तो फिर ऐसे ज्ञान की चर्चा। तीसरा पॉइंट हमने सोचा सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन भी मौज है ना। सूक्ष्म वतन का ज्ञान हम लोगों को संगम युग पर ही बाबा देते हैं। तो सूक्ष्म वतन में जाना, जैसे बहन ने कहा ना कि आना जाना ऊपर, बाबा के पास आना जाना करना, उसमें भी मौज है। तो सूक्ष्म वतन में जाके क्या क्या करना होता है बोलो, क्या करते हैं सूक्ष्म वतन में? ब्रह्मा बाबा से दृष्टि लेते बाप दादा से, और तिलक, बाबा को घुमाते हैं आप। मैंने तो सोचा था बाबा हमको घुमा रहे अच्छा, और वरदान लेते, रूरिहान करते, और सर्व संबंधों का सुख अनुभव करना। तो सूक्ष्म वतन में सबसे पहले दृष्टि, जैसे ही हम अपने फरिश्ते रूप में बाबा के पास पहुंचते हैं तो सामने बाप दादा को इमर्ज करना, ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, उसकी ब्रुकटी में शिव बाबा, ठीक है, चमक रहा है, जैसे ये बाहर फोटो है ना, ऐसे बाहे फसारे बस फसारे, तो वैसे ही बाबा वहां पे खड़ा होता है। आप अलग अलग पोज में देख सकते हैं, आपको बुला रहा है या ऐसे खड़ा है कि बस आ जाओ बच्चे, है ना। और फिर सबसे पहले बाबा से दृष्टि लेना, बाबा की आंखों से, बाबा की ब्रुकटी से पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही है, और मेरी दृष्टि को भी उतनी पावरफुल कर रही है। सवेरे सवेरे ये करना कि पवित्रता की किरणें जैसे लेजर बीम की तरह आके मेरी आंखों पर पड़ रही है, और अब मेरी आंखें इतनी चार्ज हो गई है पवित्रता से कि दिन भर में मेरी दृष्टि जहां पर भी जाएगी वहां पे पवित्रता ही छलकेगी और मुझे सब पवित्र ही दिखेंगे, और जिनको भी मैं देखूंगी उनको मेरे पवित्रता के वाइब्रेशन मिलेंगे। ऐसी पावरफुल दृष्टि बाबा से लेना। फिर किसी ने कहा बाबा से तिलक ले लेना, है ना, तो बाबा से तिलक लेना, फिर बाबा से वरदान लेना। कुछ दिन पहले एक भाई ने बहुत अच्छी ड्रिल कराई, बहुत क्रिएटिव। उसने कहा बाबा ने लेफ्ट हैंड मेरे सिर पर रख दिया और फिर उसने अपनी कमजोरियां इमर्ज करना कि ये मेरे में 5 कमजोरी है, 3 कमजोरी है, जो भी, और उस कमजोरी बाबा के हाथ में एब्जॉर्ब हो गई, लेफ्ट हैंड में पूरी हो गई। बाबा ने सारी कमजोरियां ले ली और बाबा ने कमजोरियां फेंक दी। फिर बाबा ने राइट हैंड सिर पर रखा और फिर जो वरदान हमको चाहिए बाबा से वो वरदान बाबा से लेना। तो देखो इसमें मौज है ना, क्रिएटिविटी है। कैसे किया वो भाई ने, लेफ्ट हैंड रखा, सारी कमजोरियां बाबा के पास चली गई, राइट हैंड रखा, अब बाबा से वरदान हम पर आ रहे। तो बाबा से वरदान लेना तो सूक्ष्म वतन में ही कर सकते हैं। हमारे पास 2-3 साल पहले एक डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने एक ड्रिल सिखाई थी कि अगर किसी को बीमारी है, किसी का सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पाव दर्द हो रहा है, तो अपने फरिश्ते रूप में बाबा के पास जाओ और देखो कि पूरा वाइट है ना, लाइट का शरीर हमारा, लेकिन सिर दुख रहा है ना, थोड़ा लाल लाल है इधर। और उन्होंने कहा कि बाबा से बहुत बहुत पुराने भाई थे जो बाबा से मेडिटेशन हॉल में मिलते थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा बस ऐसे हाथ लगा रहे बच्ची के सिर पर और सारी दर्द ले लिया बाबा ने। और बाबा के पास एक फर्नेस है, बहुत आग है, आग जल रही है एक जगह, और बाबा ने सारी बीमारियां ली और उसमें फेंक दी, स्वाहा कर दी। पेट दर्द हो रहा है, बाबा ने पेट दर्द लिया और फेंक दिया। इस तरह से अपनी बीमारियों को भी हम सूक्ष्म वतन में ठीक कर सकते, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। तो हमारा योग का योग, हमारी बीमारी ठीक और मौज की मौज, तो सूक्ष्म वतन में ये कर सकते। और जैसे कहा कि सैर है ना, बाबा कहते हैं ना शुभी रस पिलाता हूं मैं आपको सूक्ष्म वतन में, तो शुभी रस पियो, कभी सैर करो, देखो, देखने की कोशिश करो क्या है सूक्ष्म वतन में। एक वाइट लाइट, लाइट लाइट, बाबा फरिश्ते रूप में, हम भी फरिश्ते रूप में, चमकीली फरिश्ते की ड्रेस पहनी है हमने, ये कर सकते। और एक अभ्यास कर सकते जिनके साथ हमारी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको भी बाबा के सामने वहां पे इमर्ज कर दो। बाबा कहता है ना कि अमृत वेला जिन आत्माओं से आपकी थोड़ी अनबन होती है उनको, उन पर नजर दोहराओ, उनको भी सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर उनसे बातें करना, उनको सॉरी बोलना, उनको कहना कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत पवित्र हो, आप शांत स्वरूप हो, जैसा आप चाहते हो वैसा बोलना। ये मत करो नहीं बोलना कि आप ऐसा मत करना, आप गुस्सा मत करना, आप डांटना मत, ये नहीं बोलना, लेकिन जो हमको चाहिए ना वो बोलते जाना उनको, वो मैसेज उनको अमृत वेला पास कर देना, अमृत वेला जैसे कि वो सीड को डाल देना उनमें, तो फिर दिन में वो वैसे बदल जाएंगे, है ना। हमने खुद में ही एक्सपेरिमेंट किया है, तो होता है ये। तो सूक्ष्म वतन में ये कर सकते हैं, तो 3 हो गए। चौथा, हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, मौज है ना, कई लोग आते और कहते कि क्या यहाँ पे सफेद सफेद, आप लोग तो बहुत रूखे सूखे हो, लेकिन उनको क्या पता जब वो यहाँ का फेस्टिवल अटेंड करते आके, तब हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग तो एक दिवाली मनाते हो, हम तो 9-10 दिवाली मनाते हैं, क्योंकि हमारे हर स्थान की एक एक दिवाली होती है। तो आप दुनिया में सिर्फ अपने घर में एक दिवाली मनाते होंगे, लेकिन हमारे तो हर घर में इतनी सारी दिवाली होती है, हमको 9-10 दिवाली अटेंड करनी होती है दिवाली में, तो इतनी मौज है। लेकिन हर हमारा फेस्टिवल अगर हम देखेंगे तो हम उसको अलौकिकता से मनाते हैं, हम बाहर वालों की तरह पूजा पाठ वो सब नहीं करते, है ना, तो हम भी उसको अलौकिकता से मनाते हैं, तो उसमें भी एक मौज है। जैसे अभी वो काइटिंग पतंग वाला फेस्टिवल था, हाँ, मकर संक्रांति, तो फिर उसमें भी कैसे बाबा ने कैसे हमको परिचय दिया कि वो आत्मा है, ऊंची उड़ान उड़ रही है, देवान से मुक्त है, सारे बॉन्डेजेस से मुक्त है, तो उस तरह से उसका अलौकिक मीनिंग जानते हुए उसको मनाना। जैसे लोरी होती है ना, लोरी लोरी कहते हैं ना, उधर यहाँ पर भी कैसे मनाते हैं, वहां पर कुछ और करते हैं, यहाँ पर आग जलाते और अपनी वीकनेसेस को लिखते पेपर पे, अपनी वीक कमजोरियों को पेपर पे लिखते और उसको डालते हैं। दुनिया में कोई नहीं करता होगा ये, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये सब करते हैं। तो ये भी मौज है, संगम युग की मौज है ब्राह्मणों की, ये फेस्टिवल्स को एक अलग तरीके से मनाना। फिर है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग मतलब बाबा आके कहानियां सुनाता है ना हमको, अलग अलग कहानियां सुनाता है, और अलग अलग भक्ति को कैसे बाबा ज्ञान से समझाता है कि ये भक्ति कैसी और ये ज्ञान कैसा है, और कैसे बाबा कनेक्ट करता है उसको। जैसे कि वो स्टोरी है गणपति ना, जो पार्वती ने स्नान किया और गणपति पैदा हो गया, तो जैसे बाबा कहते हैं वो देवान की मिट्टी है ना, और फिर शंकर आके उसका गला काटता है, तो बाबा कहता है कि यह अहंकार का सिर काटते हैं, और जैसे गणपति का पेट बड़ा बताते हैं तो कहते हैं ये समाने की शक्ति है आप लोगों में, उसके हाथ में मोदक है, तो बाबा कहता है इतना मीठा बनना है आपको। तो हर चीज का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, हर स्टोरी को बाबा एक अलौकिक तरह से हमको समझाता है, तो ये एक है। इसी में हम देखेंगे हमारे पूर्वजों की स्टोरीज, हमारे जो पूर्वज है उनके बारे में भी जब हम पढ़ते हैं आदि रत्नों के बारे में, तो कितनी खुशी होती है। ये जो सारे चित्र लगे हुए यहाँ पे, एक एक चित्र के पीछे स्टोरीज है यहाँ पर। अगर किसी को आप यहाँ पे लाओ ना, तो उनको ये सब समझाओगे ना, उनको इतना अच्छा लगता है। तो वैसे ही जब हम भी पढ़ते हैं ये सब स्टोरीज तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे लास्ट वीक हम जगदीश भाई जी के बारे में पढ़ रहे थे, और इतना इतना आनंद आ रहा था पढ़ने में कि देखो ये ऐसे कर सकते हैं तो हम भी ऐसे करेंगे। जैसे भाई जी ने हड्डी हड्डी दे दी सेवा में, उनका एक अनुभव सुनाते हैं। वो एक दिन वो कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, कहीं से इनविटेशन था, तभी तो यज्ञ के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उनको बहनों ने 1 रुपया दिया और कहा कि अभी ये सेंटर तक पहुंचना है और उनकी जनरल बोगी की टिकट करवा दी। तो वो अंदर चले गए, फिर वो थर्ड बर्थ पे जाके सो गए रजाई ओढ़ के। इतने में ट्रेन को इतनी जोर से धक्का लगा और नीचे लोग चाय पी रहे थे बैठ के, तो भाई जी सीधे नीचे गिर गए, जोर से नीचे गिर गए। तो वो लोग चिल्लाने लगे कि चलो चलो हमारे पैसे दो, हमारी चाय की वो प्याला तोड़ दिया, पैसे दो, पैसे निकालो, पैसे निकाल दो। जगदीश भाई जी को लगा बाबूजी के पास, बाबूजी पैसे निकालो, ऐसे कह रहे थे बाबूजी पैसे निकालो पैसे निकालो। तो भाई जी कहते बाबूजी के पास तो पैसे ही नहीं, कहां से दूं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी एक्टिंग करना चालू कर दी कि लग गई लग गई लग गई, मुझे तो लग गई। तो फिर उनको लगा कि देखो ये तो इतने बुजुर्ग है, चलो इनको छोड़ देते, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर भाई जी ट्रेन के नीचे उतरे, अभी स्टोरी देखो आगे कैसी। अब उनके पास 1 रुपया था, तो देखो उनकी भावनाएं देखो कैसी, कि 1 रुपये में बचाना है ना अभी। तो टैक्सी वाला ज्यादा पैसे मांग रहा था सेंटर जाने के लिए, तो उन्होंने सोचा अभी कैसे करूं, तो उन्होंने अपना बैग उठाया, एक हाथ में रजाई उठाई और चलने लगे। आधा रास्ता चलने के बाद उन्होंने टैक्सी ली, क्योंकि पैसे तो थे नहीं और पैसे खर्चा ज्यादा करने नहीं थे। और जैसे ही अंदर बैठे तो उनकी पैजामा ही फट गया, और भाई जी हमेशा अपने साथ सुई धागा रखते थे, तो फिर वो सुई धागे से करके फिर वो सेंटर पहुंचे। लेकिन उनको कोई ऐसे दुख नहीं कुछ नहीं, इतनी रमणीकता देखो उनमें कि ये सुनाते टाइम पर भी कोई वो नहीं था। तो पूर्वजों की जब हम कहानी पढ़ते हैं सुनते हैं, ऐसे ही अभी रिसेंटली उनका एक अनुभव सुना। दिल्ली में नया सेंटर लिया था, 3 फ्लोर का सेंटर था, तो नीचे वाले फ्लोर पर सेंटर होने वाला था और ऊपर अकोमोडेशन, तो उसमें पिलर्स थे बीच में। तो भाई जी ने कहा कि ये पिलर्स निकालने पड़ेंगे, पिलर्स नहीं चाहिए सेंटर में, तो अगर के पिलर्स निकालेंगे तो बिल्डिंग तो नीचे गिर जाएगी ना। तो उन्होंने बोला नहीं निकालनी ही है। तो बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स को बुलाया उन्होंने, कम से कम 10-12 आर्किटेक्चर्स आए, उन्होंने कहा नहीं निकाल सकते इसको। तो भाई जी तो माने ही नहीं, उनको तो निकालना ही था। तो उन्होंने क्या किया, रस्ते पे जो मिस्त्री होते हैं ना, रस्ते वाले को बुलाया, रस्ते वालों को बुलाया और खुद खड़े रह के डायरेक्शन देते हुए सारे इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ऐसे करके उन्होंने जितने भी पिलर्स थे ग्राउंड फ्लोर पे वो सारे निकाल दिए और सेंटर में पूरा ऐसे हो गया। तो सब बोले अरे वाह ये कैसे हो गया। तो फिर संदेश आया, बाबा से संदेश मंगाया, तो बाबा ने क्या कहा होगा, तो बाबा ने कहा कि इस बार बच्चे ने ऐसे किया, इस बार बाबा ने उंगली रख दी अपनी, अगली बार जगदीश बच्चे को बोलना ऐसे करे नहीं काम। तो ऐसी ऐसी स्टोरी जब हम सुनते तो कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। आज मॉर्निंग में एक भाई जी बता रहे थे, हम शंकर और सांप की बात कर रहे थे, तो एक भाई ने बताया कि एक सांप बाबा के पैर पर ही लपट गया, तो बाबा सबको बच्चे बच्चे कहते थे ना, तो सांप को भी बाबा ने क्या कहा, इस बच्चे को दूध पिलाओ और छोड़ दो बाहर। तो मौज है, इन सब में भी मौज है। तो आदि रतन बुक जो होगी ना आपके पास, उसको पढ़ना या तो सुनना तो भी बहुत मजा आता है, और उनके बारे में पता चलता है कोर कि ये कैसे है थे, तो हमको भी ऐसे बनना है, है ना। जैसे विश्व किशोर भाव के लिए कहते हैं कि ये सत्युग में नारायण का किशोर कौन होगा, विश्व किशोर भाव ऐसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाबा का इतना ध्यान रखते थे। कहते हैं कि जब बाबा कहीं पे बाहर ट्रैवल करने जाते थे तो जो ट्रेन होती थी ना, तो ट्रेन के नीचे चाक होती ना हो, तो बाबा की सीट वो ऐसी सिलेक्ट करते थे रेलवे वालों से बात करके कि वो चाक बाबा की सीट के नीचे ना आए, ताकि बाबा को डिस्टर्बेंस ना हो सोने में। तो इतना ध्यान रखा उन्होंने बाबा का। तो इस तरह से सुनना ऐसी सब स्टोरीज। हमारे पास ओपीडी में एक नर्स आती है, यहाँ पे नन है, वो 90+ है। वो हमको आके हमेशा कहती है कि मम्मा तो मेरी फ्रेंड थी, मैंने मम्मा के साथ तो बैडमिंटन खेला है। और वो लोग जब हमको ये सब बताते तो हमको और अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है इन्होंने उनको देखा, हमने तो नहीं देखा। तो ये सब बातों को भी सुनकर भी मौज आती है ना। तो ये है रूहानी मौज। तो ये हो गया स्टोरी टेलिंग, आदि रत्नों के बारे में पढ़ना। फिर है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में मौज है कि मेहनत है? मौज। पुरुषार्थ में मौज कैसे लाए? पुरुषार्थ में मजा आना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि घिस घिस के कर रहे हैं क्योंकि करना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनना है, क्योंकि सतयुग में आना है, इसीलिए नहीं। लेकिन मौज, मौज का अनुभव करते हुए, मजा आते हुए। ऐसा नहीं कि 2 बजे दूसरे उठ रहे इसलिए मैं भी उठूं, ये 3 बजे उठ रहे तो मैं भी 3 बजे उठूं। मुझे ऐसा होना चाहिए कि मैं इतने बजे उठूं और योग करूं और मैं इतनी तपस्या करूं। ऐसे नहीं कि सिर्फ 18 जनवरी चला गया तो मेरा खत्म हो जाएगा। नहीं, वो पूरा साल रहना चाहिए, वो जिंदगी भर की जर्नी है हमारी। आप यहाँ पे मधुबन निवासियों को देखेंगे, हम जब पहले मधुबन आए तो हमने सब कुछ इनको सिर्फ देख के ही सीखा। हम अभी भी बहुत कम लोग से बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन हम इनको देख के ही सीखते हैं। इतने बड़े बड़े लोग हैं लेकिन इनकी दिनचर्या इतनी फिक्स्ड है, इनका योग का टाइम इतना फिक्स्ड है, और बस उनको देख के हम सीखते हैं उनकी विशेषताओं को। तो पुरुषार्थ में उनको कैसे मजा आ रहा है, तो वैसे हमको भी मजा आना चाहिए पुरुषार्थ में। और हमें लगता है अगर बाबा से हमारा प्यार होगा ना बहुत ज्यादा, तो पुरुषार्थ में मजा आएगा। तो अभी क्वेश्चन है सबसे कि बाबा से प्यार कैसे बढ़ाए, क्या करे? हाँ, प्राप्तियों को सामने रखे और संबंधों से अनुभव करे। हाँ, जब हम कोई रिलेशनशिप, जैसे अगर हम मिले तो हम कहेंगे ये माता है, ये मैं हूं। लेकिन अगर हम इनको कहेंगे ये मेरी माता है या ये मेरी फ्रेंड है, तो हमारा एक रिलेशनशिप हो जाता है। इसी तरह से बाबा जब संगम युग पर आए तो बाबा ने क्या कहा, मैं आपका बाप हूँ, आप मेरे बच्चे हो, तो हमारी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हो गई ना, तो वो प्यार वाला संबंध। तो इसी तरह से संबंधों से बाबा को याद करना। और एक किसी ने कहा प्राप्तियों को सामने रखना, तभी भी होता है, बाबा से प्यार बढ़ता है। बातें करना, रू रिहान करना, साथ रखना, हर चीज में बाबा को साथ रखना, बचपन के दिनों को याद करना। इसी तरह से जो बाबा ने हमको दिया ना, जो किसी ने और ने नहीं दिया लेकिन बाबा ने हमको वो सब चीजें दी, उसके जो उपकार है हम पर, अगर उसको भी याद करें ना, जैसे हम योग में बैठते आकर, तो 5 मिनट भी अगर हम इन चीजों को याद करें ना कि संगम युग पर ब्राह्मण जीवन में आके बाबा ने मुझे क्या क्या दिया, कितनी डिफिकल्टीज थी लाइफ में, इस लाइफ में उसने ये तरह से मुझे मैं मदद की, तो भी आंखों में आंसू आने लगते हैं और योग अपने आप लगता है। प्यार अपने आप बढ़ता है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती कि बैठूं और पहले 5 स्वरूप करूं, उसके बाद सकाश दूं, उसके बाद बीज रूप करूं, उसके बाद एंड करूं। ये कोई टाइम कॉन्शियसनेस नहीं है हमारे योग में। फिर हम सिर्फ प्यार में इतने लवलीन हो जाते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता कि गीत कब बजे और अभी उठ के जाना है। तो याद करना कि ये समय बाबा ने याद किया, छोटी छोटी हमारी विशेष जो बाबा पूरी करता है उसको याद करना कि आज बाबा ने ये किया मेरे लिए। अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएंगे। थोड़े दिन पहले हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, हमने खाना नहीं खाया, तो हमको एक्सपेरिमेंट करना था। तो हमने एक्सपेरिमेंट में बाबा को कहा आज हमको हलवा खाना है बाबा, ऐसे कह के हम हॉस्पिटल से निकले। अब वो भूल गए हम बोल के, और हम आए यहाँ पर और कोई डे भी नहीं था, कोई थर्सडे वाला भोग भी नहीं था, कुछ नहीं, लेकिन बस संकल्प किया और देखने के लिए कि बाबा करता है कि नहीं। और है ना, हम आए यहाँ पे, पानी पिया, चाय ली और जहाँ माता जी टोली देते ना उधर गए, और जैसे ही वहां गए इतना बड़ा डेग रखा है वो हलवे का, और हमारी आंख में आंसू आ गया कि बाप रे ये क्या है, इतनी छोटी छोटी हमारी विश बाबा पूरी करता है, तो हम क्यों नहीं उसकी जो वो कहता है वो करे, तो कैसे प्यार नहीं बढ़ेगा, है ना। तो जब भी उसने हमको हमारी जितनी भी परेशानियों में हमारी मदद की, उनको याद करने से प्यार बढ़ता है। एक और चीज आप देखेंगे बाबा मिलन में, बाप दादा मिलन में, बाबा का वो चेहरा अपने सामने लाओ, अभी लेके आ जाओ, देखो अभी लेके आ जाओ, और उन आंखों को देखो, वो आंखें गीली गीली आंखों को देखो, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो, देखो अपने आप प्यार आता है, ऐसा आता है कि नहीं। तो जब योग में बैठेंगे ना तो ये एक्सपेरिमेंट्स करना कि बाबा को सामने लाना, जब गीत बज रहा है बाबा को सामने लाना, वही दृष्टि देता हुआ बाबा, वही मुस्कुराता हुआ बाबा। देखो बाबा भी कितना कम आते हैं, लेकिन सिर्फ आकर दृष्टि देकर भी जाता है तो कितना हमारा दिल भरता है और ऐसे लगता है कि क्या देकर गया। तो वो वाली सीन इमर्ज करना, तब पुरुषार्थ में मजा आएगा। नेक्स्ट हमने सोचा गीत संगीत। वैसे तो कभी कभार बाबा कहता है तुम्हारा गीत संगीत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कभी कभार कहता है कि गीत रहने चाहिए तुम्हारे पास, अच्छे अच्छे बाथरूम में जाकर भी डांस करो, ऐसा भी कहा है बाबा ने। तो गीत पे ऐसे, तो गीत जो बजते हैं ना उनके शब्दों में स्थित हो जाना और फिर बाबा को याद करना, तो उसमें भी मौज है। हमने सबसे पहले ज्ञान नहीं सुना था हॉस्पिटल जहाँ बॉम्बे में हम थे, इंटरनेशनल योग था, और उस इंटरनेशनल योग में वो सिर्फ गीत ही बजा रहे थे और परमात्मा की याद के गीत बजा रहे थे, और वो गीत सुन के ही हमको रोने आ रहा था, कोई कनेक्शन ही नहीं था ब्रह्म कुमारी से, लेकिन ऐसे लगा कि ये इतने डिवाइन गीत है जो बाहर भी नहीं है, जो दुनियावी, हम बॉम्बे में रहते तो सोचो वहां के गीत, तो वहां वो जब गीत बज रहे थे उससे ही प्यार आ रहा था और इससे इतना मजा आ रहा था। तो गीत सुनना, ऐसे ही दादी जी देखो अभी आते हैं, दादी जी जब योग कराते 7 से 7:30 तो दादी कहते अच्छे अच्छे गीत बजाओ, अभी दादी म्यूजिक बजाने नहीं कहते, बोलते गीत बजाओ। तो गीत से भी एक है कि मौज है इसमें भी। और जगदीश भाई जी की एक क्लास सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि गीत सुनना भी बाबा की याद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करना बीज रूप स्थिति ज्वालामुखी हो, लेकिन गीत सुनते हुए खाना बनाते समय तो उसको भी बाबा की याद कहेंगे, तो वो भी मौज है। फिर दूसरा हमने सोचा ड्रामा की पॉइंट्स को याद करना, जब भी थोड़ा डाउन हो जाए तो रूहानी मौज को ऊपर लाने के लिए ड्रामा की पॉइंट्स को याद करना। जब ड्रामा की पॉइंट्स बुद्धि में रहेंगी तब हमारी स्टेज लो नहीं होती है। एक एग्जाम्पल बताएंगे, हापुड़ में बहुत दंगे हुए थे, बहुत अपोजिशन हुए थे बाबा के टाइम पे, है ना, उधर इतना विरोध हुआ था, सेंटर को ताला लगा दिया गया था, सेंटर के पानी को पॉइजन कर दिया गया था, बहुत जबरदस्त विरोध था, और है ना, एक भाई के आंग पे सांप डाल दिया गया था, इतना परेशान कर रहे थे उधर। तो ये न्यूज बाबा को आई कि बाबा ऐसे ऐसे हो रहा है तो बहनों को वापस बुला ले, तो बाबा ने क्या कहा, नहीं, बाबा ने कहा नथिंग न्यू, बाबा ने ड्रामा के ऊपर खड़े होकर कहा नथिंग न्यू, वहीं रहना है बच्चों को और फेस करना है। तो देखो उनको कोई डिफिकल्ट, बाबा रोए नहीं, घबराए नहीं कि बच्चों को वापस बुला लूं मैं, इतना फर्म क्यों थे? क्योंकि ड्रामा का ध्यान पक्का था। ऐसे ही मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो जो बहन मम्मा के साथ थे वो रोते रोते बाबा के पास गए और बाबा को कहा, बाबा वो मम्मा चली गई, हमारी मम्मा चली गई, और रो रही थी वो बहन। तो बाबा ने कहा कि रो रही क्यों हो, मम्मा तो बाबा की थी, शिव बाबा की थी, शिव बाबा के पास चली गई। ऐसे उत्तर था, ऐसे कोई घबराहट नहीं थी कि अभी मम्मा चली गई तो अब क्या होगा, अभी कौन देखेगा बच्चों को, ये कोई भी वो ही नहीं था। यहाँ तक कि जब दादियां रो रहे थे तो बाबा ने कहा, क्यों, जब दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो उनको कहते हो कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, और जब तुम्हारी मम्मा गई तो है ना रोना धोना। और यहाँ तक कि बाबा ने सारे बच्चों को योग युक्त रखा, बाबा ने कहा कि आप लोग योग लगाओगे ना तो मम्मा वापस आ जाएगी। आप लोग वो चैप्टर पढ़ना, बहुत रमणीक है जिस तरह से वो लिखा है। बाबा ने कहा कि अगर आप लोग योग लगाओगे ना तो मम्मा वापस आ जाएगी। तो सब सेंटर पर योग, मधुबन में योग चल रहा है कि मम्मा वापस आ सकती है। और फिर संदेशी को बाबा भेजते थे बीच बीच में कि जाओ देख के आओ अभी है ना कहा। तो संदेशी कहती थी रस्सी दिख रही है, तो बाबा कहते थे हम रस्सी डाल के मम्मा को नीचे खींच लेंगे। इस तरह से शमशान घाट पहुंचने तक भी सब बच्चे योग में थे। तो ड्रामा के पॉइंट्स पर जब हम अटल रहते तो कुछ रूहानी मौज हमारी कम नहीं होती। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है दान, दान करना। जब हम दान करते हैं ना किसी चीज का तो हमको बहुत खुशी होती है। तो उसी तरह से गुणों का दान, गुणों का दान करना, दूसरों की विशेषताएं देखो। हमने लास्ट ईयर कोई प्रोग्राम किया था, उसमें हम एक डॉक्टर थे हमारे साथ, हम उनको चेयर लगाने का काम दे रहे थे, पेपर लगाने का काम दे रहे थे, और बाद में हमको पता चला कि ये बहुत बड़े डॉक्टर है और ये बहुत ही बड़े हैं, कहीं के डायरेक्टर है। और फिर हमको ऐसे लगा कि कितनी निर्माणता है। तो उन्होंने अपने शब्दों से हमको नहीं सुनाया कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, लेकिन अपने कर्मों से गुणों का दान दिया। ऐसे बाबा साकार मुरली में कहते हैं कि जनक बच्ची गुणों का दान देने में सबसे आगे है। तो इसी तरह से गुणों का दान देना, जब हम देते हैं तो हमको खुशी होती है ना। ऐसे ही रमेश भाई जी को हम देखे थे, जैसे रमेश भाई जी को भी एक साल हो गए इसलिए उनकी याद आई 27 जनवरी को। भाई जी का जब डायलिसिस चलता था ना, तो डायलिसिस में बैठे बैठे वो आराम से नहीं 3-4 घंटा ऐसे रहते थे, 3.5-4 घंटा डायलिसिस होता है, उसमें भी उनका लैपटॉप चल रहा होता है या तो एक बहन खड़ी होती थी और 3 घंटा उस बहन को डिक्टेशन देते थे। कभी कभार उनकी हालत ठीक भी नहीं होती थी लेकिन उन्होंने अपनी हड्डी हड्डी सेवा में दे दी। तब उनको देख के ऐसे लगा कि अगर हमारा सिर दुखता है, हाथ दुखता है, पैर दुखता है या छींक आती है तो बैठना नहीं है, ये तो देखो इनकी बीमारी देखो कितनी आगे और इनकी सेवा देखो कितनी आगे है। तो उस तरह से इन लोगों ने कुछ बोल के नहीं किया लेकिन करके किया। तो ये भी एक है कि दान करने में भी खुशी है, और वो खुशी में रहते थे, मौज में रहते थे, इन सब की स्थिति एकदम टॉप लेवल की। तो गुणों का दान, तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स थे रूहानी मौज में रहने के लिए। तो देखा हमने अमृत वेला, याद बाबा की, मुरली और सूक्ष्म वतन की सैर, पुरुषार्थ, ड्रामा के पॉइंट्स, गीत, स्टोरी टेलिंग, ऐसे और भी बहुत सारे आएंगे, बाबा का परिचय, और जैसे कि सेवा, सेवा में भी बहुत खुशी मिलती है हमको, मौज में रहते हैं, भोजन बनाने की सेवा, भोजन बनाने की सेवा में भी बहुत खुशी होती है, सत्यु के नज़ारे याद करना, बार बार सत्यु के नज़ारों को याद करना, जो चाहिए उसको याद करना है ना, तो उसको याद करना कि लक्ष्मी नारायण ऐसे होंगे, या अपने आप को देखो मैं कृष्ण के साथ खेल रहा हूँ, मैं बच्चा हूँ, ये मेरी माँ है, ये महारानी मुझे दूध पिला रही है, ऐसे कुछ भी देख सकते हैं आप। इसी इसमें मौज है कि उस दिन एक कौन सी दादी का हम अनुभव सुन रहे थे, तो उसमें वो दादी ने पूछा सबको कि लक्ष्मी नारायण एक ही बार कपड़े पहनेंगे ना उस दिन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम यूज नहीं करेंगे। तो दादी ने पूछा कि फिर क्या होगा उनके कपड़ों का, तो क्या होगा बोलो, दासी पहनेंगी। हमने भी यही उत्तर दिया था, तो दादी ने बोला नहीं, वहां की दासी भी संपन्न होगी, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से ऐसी आदि रत्नों की स्टोरीज में सुना था वो सब। तो सत्यु के नजारे याद करेंगे तभी भी मौज में रहेंगे। तो ये है रूहानी मौज संगम युग की। ठीक है, ओम शांति।